सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेरा मानना है कि हर सुबह कुछ कहती है, लेकिन हम कभी कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर ये सुबह क्या कहना चाहती है। एक अंधेरी रात हर इंसान के जीवन में आती है, इसी तरह परेशानियां भी सबके जीवन में आती हैं। लेकिन जिस तरह अंधेरी रात के बाद एक चमकदार सुबह आती है, उसी तरह इन परेशानियों का हल करने के बाद खुशियां आती हैं। तो आइए इन्हीं खुशियों को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील इक्विप यू विद द लेटेस्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज। ऑल्सो वील बी प्रोवाइडिंग यू द मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड वील एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ टूडे दैट इज 20th ऑफ September. So let's delve into the freshness of this particular morning. So be with us for the next 30 minutes. Let's begin with the headlines first.
जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र की यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा जाएंगे। वे पीएम विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण वितरित करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 23 तारीख तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कई विदेश नेताओं से वार्ता करेंगे और अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि श्री मोदी कई व्यापारिक और औद्योगिक प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की खामियां दूर करने और दक्षता बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने तथा केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना को व्यापक बनाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं।
President Draupadi Murmu will address the centenary celebrations of the ICAR, National Institute of Secondary Agriculture, at Namkum in Ranchi today. Jharkhand Governor Santosh Kumar Gangwar, Union Ministers Shivraj Singh Chauhan and Sanjay Seth, and Chief Minister Hemant Soren will attend the function. This institute was formerly known as Indian Lac Research Institute. The innovation by the institute generated additional income of 100 crore and provided stability to lac production across the country. The event is expected to be attended by VCs of various universities, scientists and 8 to 10,000 farmers through virtual mode. The institute has helped millions of farmers in scientific cultivation and processing of lac in the last one century. It has benefited tribal and poor farmers residing in backward districts of Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Maharashtra and West Bengal. Vice President Jagdeep Dhankar will visit Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu from today. This will be the Vice President's maiden visit to the Union Territory. During his visit, the Vice President will inaugurate several key infrastructure and development projects. He will visit Daman today to inaugurate the aviary at Jampur. He will also visit several places in Daman, including the Health and Wellness Center. Tomorrow, Mr. Dhankar will visit the Namo Medical Education and Research Institute in Silvassa in Dadra and Nagar Haveli and interact with students and faculty members. He will also attend a public function organized by the West Zone Cultural Center in Silvassa. In the afternoon, the Vice President will engage with elected representatives from local panchayats and municipal council in Diu.
सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 के उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का खुलासा करने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। नीट पीजी परीक्षा एनबीई द्वारा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी और परिणाम 23 अगस्त को घोषित किए गए थे। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉज लिस्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ आज मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मियारा की खंडपीठ में पेश याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने के लिए ये सहमत हुए और याचिकाकर्ता पक्ष को स्थायी वकील की सेवा के अलावा एनबीई को याचिका की एक प्रति देने के लिए कहा था।
Celebrating the significance of India's rivers, Nadi Utsav 2024 was inaugurated at the Indira Gandhi National Centre for the Arts, IGNCA, in New Delhi yesterday. The fifth edition of the festival is being celebrated under the theme Rivers in Reverse, Making of a Lifeline. focusing on the components of a river and its surrounding culture. IGNCA member secretary Dr. Sachidanand Joshi said that the purpose of Nadi Utsav is to inspire feelings, enthusiasm, reverence, values and faith towards rivers. The three-day Nadi Utsav is being celebrated at the IGNCA building between 10 a.m. and 8 p.m. with free entry for the public. Now let's go beyond the boundaries. European Commission President Ursula von der Leyen has announced a 10 billion euro funding package from the European Union to support Central European countries struggling with the worst flooding in decades. The announcement was made yesterday during a meeting in Wrocław, which was attended by Polish Prime Minister Donald Tusk, the Czech and Slovakian Prime Ministers and the Austrian Chancellor. At a press conference following the meeting, von der Leyen assured that the EU would provide long-term support for reconstruction efforts in the coming months and years. Poland has been the hardest hit by the floods, particularly in its southwestern regions. The floods have caused widespread infrastructure damage, forced evacuations, and led to at least 7 deaths in Poland. The Czech Republic, Slovakia, and Austria have also been impacted by the flooding, though to a lesser extent.
वहीं शगुन बात की जाए अगर खेलों की तो 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन के 8वें दौर में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक की दावेदारी मजबूत कर ली है। हालांकि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चल रहे इस मुकाबले के महिला वर्ग में भारत को पोलैंड से हार का सामना करना पड़ा। 8वें दौर के बाद भारत, कजाकिस्तान और पोलैंड की महिला टीमों के समान रूप से 14-14 अंक हैं।
फॉरट नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट।
जी,
India will resume their first innings at 339 for 6 against Bangladesh on the second day of the first test at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this morning. Ravichandran Ashwin, unbeaten on 102, and Ravindra Jadeja, not out on 86, were at the crease when stumps were drawn yesterday. The highlight of the day's play was the exceptional unbeaten partnership of 195 runs between Ashwin and Jadeja. India, after being put into bat, was struggling at 144 for 6 at one stage, staring at an early collapse. However, the spin duo of Ashwin and Jadeja rescued the host with their brilliant stand. Ashwin notched up his 6 test centuries, equaling the test century tally of Indian greats MS Dhoni and Mansoor Ali Khan Pathodi. Earlier, Yashasvi Jaiswal contributed 56 and Rishabh Pant added 39. For Bangladesh, Hasan Mahmood was the pick of the bowlers, taking 4 wickets.
और अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और जानते हैं शगुन से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
एब्सोल्युटली फरत, वील बिगिन विद चेन्नई। The National Disaster Management Authority, in collaboration with the Southern Command of the Indian Army and Tamil Nadu State Disaster Management Authority, conducted Exercise Ekya, an integrated symposium-cum-table-top exercise on disaster management in Chennai. This two-day event brought together key stakeholders from across peninsular India to enhance disaster preparedness and response capabilities. The aim was to integrate India's disaster management community. The exercise witnessed participation from a diverse range of organizations, including representatives from 6 southern states and union territories, namely Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry. We are staying with Chennai. The Passport Seva Project portal, www.passportindia.gov.in, will not be available for passport applicants from 8 p.m. on September 20 to 6 a.m. on September 23, owing to technical maintenance. A press release from the Chennai Regional Passport Office asked applicants to visit the portal after the scheduled maintenance for appointments and queries. Now focusing on Bengaluru, the Indian Institute of Horticultural Research is imparting a 10-day training program on scientific production and processing of Kamalam fruit, known as dragon fruit. There are 13 participants from various states and research institutions taking part in the training program funded under Mission for Integrated Development of Horticulture by Government of India. Kamalam fruit has huge demand in domestic and international markets, and the participants will be trained in advanced techniques in the cultivation, management and commercial production of Kamalam fruit. They will be taught propagation methods, nutrient management, pest and disease control, harvesting techniques and post-harvest management, including processing and marketing of this exotic fruit crop. Now, let's turn our attention to Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has directed officials to prepare an action plan for issuing new ration cards to the eligible in the state. Authorities have been asked to receive applications for new ration cards from October 2. He also discussed the idea of issuing digital ration cards to all the needy and decided to hold another review on this issue. The Chief Minister held a review meeting in Hyderabad yesterday on the procedures to be adopted to issue ration cards. An official note informed that Cabinet Ministers N. Uttam Kumar Reddy, P. Srinivas Reddy and D. Rajanarasimha made some suggestions and gave instructions to the officials on ration cards. Telangana Chief Secretary Santi Kumari and other senior officials were also present. We have more news from Hyderabad. In Telangana, schools across the state will have 13-day short-term holidays for the Dussehra festival. The Dussehra vacations will be from October 2 to 14, with reopening scheduled for October 15. As per the academic calendar issued by the school education, students will have summative assessment SA1 from October 21 to 28, followed by the formative assessment FA3 before December 17. The schools should hold the FA4 for Class 10 students by January 29 next year and by February 28 for Classes 1 to 9 students. The SA2 for Classes 1 to 9 is scheduled from April 9 to 19. The pre-final exams for the Class 10 students will be conducted before February 28 and SSC board examination will be held in March. So these were the updates, Farhat, from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Farhat will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। तो जैसा कि पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर, दिल्ली सरकार ने मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दी है। ग्रामीण सेवा वाहनों के मालिक आधार और एनरोलमेंट आईडी का उपयोग करके अपने पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कल केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार सड़कों के कार्यात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन, निर्माण गुणवत्ता पर्यवेक्षण और इंजीनियरों तथा स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बीच खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे कई देशों की भागीदारी पर कहा कि ये दुनिया के साथ काम करने का एक बेहतर मंच है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मंच पर खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे व्यापक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर श्री शिंदे ने स्वच्छ भारत अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इसके लाभ स्पष्ट हैं और लोग अब स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का एक मंत्र है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने शहर में गहन सफाई अभियान भी शुरू किया है, जिससे प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिली है। तो शगुन, दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी स्वच्छता का ध्यान दिया जा रहा है और प्रदूषण पर खासतौर पर विशेष जो है वो ध्यान दिया जा रहा है।
इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव
जी। और अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर आज से आपातकालीन ड्यूटी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के छात्र संगठन के तहत जूनियर डॉक्टर एक सप्ताह से अधिक समय से राज्य स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हुए थे और पीजीटी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, जिनकी 9 अगस्त को कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी के दौरान दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अदालत में न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर एक महीने से अधिक समय से काम पर नहीं जा रहे थे। और अब श्रोताओं, महानगरों की खबरों के बाद रुक कर लेते हैं हमारे मौसम की। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन मुंबई में बारिश का दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
वेल फरहत, इट्स मच द सेम इन अदर मेट्रो सिटीज आल्सो। also, Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky again with one or two spells of rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और शगुन, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि हमारा ये कार्यक्रम इतिहास के बिना अधूरा है, तो आइए जी सबसे पहले इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं. आज जैसा कि 20 सितंबर है और आज ही के दिन 2009 में मराठी फिल्म हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री को ऑस्कर अवार्ड की विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया था.
Well, we are going way back in time, Farhat. In the year 1878, Hindu, an English weekly in Madras with G.S. Iyer as its editor, was first published with only 80 copies. In the year 1932, Gandhiji commenced fast unto death hunger strike in Pune prison to secure abolition of separate electorates for Harijans and untouchables.
1984 में आज ही के दिन लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित अमरीकी दूतावास पर आत्मघाती हमला किया गया. वहीं 1983 में एप्पल उपग्रह ने कार्य करना बंद किया और 1970 की अगर बात की जाए तो रूसी प्रोब ने चांद के सतह से कुछ चट्टाने एकत्र की थीं.
इन द ईयर 1989 नाउ आईपीकेएफ सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशंस अगेंस्ट एलटीटीई इन श्रीलंका. एलटीटीई इन टर्न सीज्ड ऑल ऑपरेशंस अगेंस्ट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस.
और सन 2001 में आज के दिन अमेरिका ने 150 लड़ाकू विमान खाड़ी में उतारे थे.
वेल, इफ वी गो बैक इन टाइम अगेन, इन 1993 फर्स्ट डेवलपमेंटल लॉन्च ऑफ पीएसएलवी एन इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1E कैरिड रिमोट सेंसिंग पेलोड्स एंड इट कुड नॉट बी प्लेस्ड इन द ऑर्बिट. इन 1997 प्रेसिडेंट के आर नारायण इनॉग्रेटेड द फर्स्ट डॉक्टर अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी इन चेन्नई तमिलनाडु. And in the year 1999, Farhat, Shobha Subramaniam, Managing Director of the Anand Bazar Patrika Group of Publications, was elected President of the Indian Newspaper Society for 1999 to 2000.
और अब हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने का जो है समय आ गया है. सबसे पहले हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों को. भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट की आज पुण्यतिथि है. एनी बेसेंट ने कई मौकों पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध करके आयरन लेडी की छवि बनाई. एनी बेसेंट भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थीं और थियोसॉफी का प्रसार करने के लिए भारत आईं. उन्हें भारत से अद्भुत प्रेम और अनुराग था और भारतवासियों द्वारा उन्हें दिया गया सम्मान और आदर काफी दर्शनीय था. आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से सोए हुए भारत को जगाने के लिए भारत को अपना घर कहने वाली एनी बेसेंट ने दुनिया भर के धर्मों का गहन अध्ययन किया, उन धर्मों को जाना, परखा और समझा कि वेद और उपनिषद का धर्म ही सच्चा मार्ग है.
वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग जेकब ग्रिम, जर्मन ऑथर, लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट एंड फोकलोरिस्ट. ही फॉर्मुलेटेड ग्रिम्स लॉ ऑफ लिंग्विस्टिक्स, व्हिच इज काइंडली like mostly heard of, law of linguistics. He was the co-author of the Deutsche Wörterbuch, which means German dictionary. He is also the author of Deutsche Mythology and the editor of Grimm's Fairy Tales. He was the elder brother of Wilhelm Grimm, and together they were the literary duo known as the Brothers Grimm.
और आज ही के दिन हमें अलविदा कहा था भारत की ऐसी शहीद पुत्री ने जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली. कनकलता बरुआ की हम बात कर रहे हैं. मात्र 18 वर्षीय कनकलता अन्य बलिदानी वीरांगनाओं से उम्र में छोटी भले ही रही हों, लेकिन त्याग और बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं था. एक गुप्त सभा में 20 सितम्बर 1942 को तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया. तिरंगा फहराने आई हुई भीड़ पर गोलियां दागी गई और यहीं पर कनकलता बरुआ ने शहादत पाई.
We are also remembering Julie Stein, songwriter and composer widely known for a series of Broadway musicals, including several famous frequently revived shows that also became successful films, such as Gypsy and Funny Girl. He wrote scores for film musicals. Stein collaborated with the lyricist Sammy Kahn to write popular ballads for Frank Sinatra in the early 1940s. He contributed 6 songs to a Broadway revival of Peter Pan. He wrote or co-wrote more than 1,500 songs. And for you listeners, we chose this melodious song in Frank Sinatra's voice, which is composed by Julie Stein. So listen in.
To be loving you. So lucky to be the one you run. sun to see in the evening when the day is through. I only know what I know.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव का। इन्हें कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 2011 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और 1990 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
And these were awarded to him for his contributions to art and cinema. And he was one of the most prominent figures in the industry. And for you listeners, we have this song from his movie Dharmdata.
नागेश्वर राव को तेनालीराम कृष्णा, देवदास, माया बाजार और मिस्टर सम्मा जैसी हिट फिल्मों में अभिनय के लिए भी याद किया जाता है। और अब हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में सन 1950-60 की प्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला को। उनको गुरुदत्त की फिल्म आरपार और सीआईडी के लिए याद किया जाता है। शकीला ने शक्ति सामंत की फिल्म चाइना टाउन में अपने समय के प्रसिद्ध अभिनेता शमी कपूर के साथ अभिनय किया। शकीला ने 1961 में फिल्मों से संन्यास लिया और विवाह करके वो भारत आकर बस गई। उनकी बहन नूरजहां का विवाह प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर के साथ हुआ। दास्तान के बाद शकीला ने गुमास्ता, खूबसूरत, राजरानी, दमयंती, सलोनी, सिंधवा, द सेलर और आगोश अरमान जैसी कई फिल्मों में काम किया।
के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। खुले के पहला पहला प्यार।
And listeners, we are also remembering John Hart, American film and television actor. In his early career, Hart appeared mostly in westerns, although he played mostly minor roles in some fairly well-known films. He was probably best known for playing the character Hawkeye in the TV series Hawkeye and the Last of the Mohicans. Well, it's interesting to know that he started his acting career landing roles in films such as Gail Patrick drama King of Alcatraz, Illegal Traffic and Vacation Days.
और अब हम याद कर रहे हैं रंगमंच के गुजरे जमाने के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक दिनेश ठाकुर को। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। बासु चटर्जी की फिल्म रजनीगंधा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म रजनीगंधा से ये खूबसूरत सा गीत।
कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आंख के पीछे मन दौड़ने लगता है।
दिनेश ठाकुर को थिएटर का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपना ज्यादातर समय थिएटर में ही बिताते थे। दिनेश ठाकुर मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में किरदार भूमिकाओं के रूप में दिखाई दिए। एक पटकथा लेखक और कहानी लेखक के रूप में वो फिल्म घर की कहानी और पटकथा लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिसने उन्हें 1989 की फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जिताया था। तो आइए सुन लेते हैं फिल्म घर से ये खूबसूरत सा गीत।
राज है आपसे भी खूबसूरत, आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए थे राज है।
और भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार जो मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा और टीवी जगत में सक्रिय रहे उनका आज जो है जन्म हुआ था। हम याद कर रहे हैं अनुपम श्याम ओझा को। इन्होंने कई टीवी धारकों में काम किया और 2009 में आए टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा में भी इन्होंने काम किया और थिएटर से इन्हें काफी लगाव रहा।
वेयर ऑल्सो इट्स द बर्थडे ऑफ सोफिया लोरेन, इटालियन एक्ट्रेस encouraged to enroll in acting lessons after entering a beauty pageant. She began her film career at age 16 in the year 1950. She appeared in several bit parts and minor roles in the early part of the decade until her 5-picture contract with Paramount, and this launched her international career. Her film appearances around this time include The Pride and the Passion, Houseboat, and It Started in Naples. Her performance in the film Two Women won her the Academy Award for Best Actress, making her the first performer to ever win an Oscar for a non-English language performance. Yesterday, Today and Tomorrow, Marriage Italian Style, for which she was nominated for a second Oscar, Sunflower, The Voyage, A Special Day and The Life Ahead are some of her films. And listeners, for you we have this theme from her Oscar-winning movie which brought her an Oscar, Two Women.
और श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक महेश भट्ट का। उनकी शुरुआती निर्देशन करियर के दौरान उन्होंने कई बहुप्रशंसित फिल्में दी जैसे अर्थ, सारांश, जानम, नाम, सड़क, जख्म। इन्होंने मंजिलें और भी हैं से अपने निर्देशन कार्य की शुरुआत की। इनके द्वारा निर्देशित फिल्म सारांश को मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में दिखाया गया था और साथ ही इसकी कहानी लिखने के कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। तो आइए सुन लेते हैं इस फिल्म से ये गीत। छब्बीस साल की उम्र में महेश भट्ट ने निर्देशक के तौर पर फिल्म मंजिले और भी हैं से बॉलीवुड में अपना पदार्पण किया। इसके बाद 1989 में आई लहू के दो रंग, जिसमें शबाना आजमी और विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में थे। इन्होंने 1980 के फिल्मफेयर अवार्ड्स में 2 पुरस्कार भी जीते। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर प्रदर्शन किया। उनकी पहली बड़ी हिट थी अर्थ। इसके बाद उनकी जानम और नाम को भी काफी पसंद किया गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो जाने माने निर्देशक बन गए और आवारगी, आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क गुमराह जैसी फिल्में दी।
की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
बॉलीवुड अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म डैडी से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म की कहानी एक पिता और बेटी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता को शराब की लत से छुटकारा दिलाना चाहती थी। तो इस फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत काफी लोकप्रिय हुआ, आईना मुझसे पहली सूरत मांगे। आगे सुनो। तो इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।
Also listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thank you so much for tuning in. We hope you have a wonderful day.
Namaskar.